जय धवला, पुस्तक 10वीं, लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुतात्मने नमः, नमो नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सवसावनं वेदक वेदक वेदकं अवेदकं वेदकं संसिद्धं सिद्धं परमियशिरसा वोच्चं वेदगमहायामनं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 10वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 28 पर आ गए, 28। उत्तर प्रकृतियों की हम उदीर्णा देख रहे हैं, प्रकृति उदीर्णा। उसमें हमने ओग से अंतर देखा था, एक जीव की अपेक्षा 24 संयोग द्वारों में से हम देखते देखते स्वामित्व काल अंतर देखेंगे, देख चुके हैं। अब उसमें आदेश से देख रहे थे, नारकियों में हमने देखना शुरू किया था, वो नारकी की बात पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, हास्य और रति के उदीरक का जघन्य अंतर, यहाँ काल की बात नहीं अंतर की बात चल रही है, एक अंतर मूर्त है। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 आ गए, क्योंकि नारकियों की अपेक्षा बात कर रहे थे, इसलिए कुछ कम 33 सागर का। 12 कषाय अरति शोक भय और दुरुपता के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मूर्त लिया। नपुसक वेद के उदीरक का अंतर काल नहीं है, यानी उसका नारकी जीवों के तो निरंतर उस पर उदीरणा चल रही है। ये जो 33 सागर की बात की, ये 7वीं पृथ्वी में ही घटित होती है, इसलिए कहा 7वीं पृथ्वी में भी ऐसा ही समझना चाहिए। और पहले पृथ्वी से लेकर 6ठी पृथ्वी तक बाकी तो वैसा ही होगा, उत्कृष्ट में अपनी अपनी स्थिति कहने पर। विशेषार्थ में हमने ये बात देखी थी, नरक में अरति शोक भय और जुगुप्सा का वेदक जीव अवेदक होकर, जब उसका उदय नहीं है तब उसकी उदीर्णा भी नहीं होगी, तो अवेदक होकर देखो, ये उदय जो है उदीर्णा की अपेक्षा भी हो सकता है, उदय रेगुलर है वो भी हो सकता है, तो उसको वेदक कहा है। उदीर्णा हो या उदय होकर, यानी स्थिति पूरी होकर उदय में आ जावे, दोनों को ही वहाँ वेदक कहेंगे। तो कहते अवेदक होकर पुनः अंतर्मूल काल के पहले उनका वेदक नहीं होता। अवेदक कब होगा? जब हास्य रति का वेदक चालू हो जाएगा, तो वो तो अंतर्मूल तक रहेगा ही, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। इसलिए उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूल कहा, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि अरति और शोक का अवेदक होने पर ऐसा जीव हास्य और रति का अंतर्मूर्त काल तक नियम से वेदन करता है, उसका उदय है अंतर्मूर्त तक, वो भी ज्यादा नहीं होगा, नरक की बात चल रही है, अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगा। अब तीर्यंचों में हम देखेंगे, यहाँ पर तीर्यंचों में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्य है। मिथ्यात्व के उदीरक का अंतर, यानी मिथ्यात्व का उदय उदीरणा कहाँ है? तो पहले गुणस्थान में, तो उसका अंतर कब पड़ेगा? जब ऊपर के गुणस्थान में जीव रहेगा तब, तो सम्य दृष्टि होगा, तो जगन्य में जगन्य अंतर एक अंतर्मूर्त होगा और उत्कृष्ट अंतर त्रियंशों में रहते हुए उत्कृष्ट अंतर चाहिए। ओग में अगर हम मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर देखते हैं उदीर्णा का, तो कितना देखा था याद है? हाँ, 2/67, क्योंकि तब तक वो मिथ्यात्व में नहीं आया, परंतु यहाँ तिरियंचों में रहते हुए उत्कृष्ट अंतर देखना है, तो 3 पल्ले की आयु में वहाँ जाके उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व के उदीर्णा का अंतर शुरू हुआ। अंतर उदीर्णा मिथ्यात्व में हो रही थी, समय दृष्टि हुआ तो अंतर शुरू हुआ, मिथ्यात्व के उदीर्णा का अंतर शुरू हो गया। जब तक समय दृष्टि रहेगा तब तक अंतर चल रहा है, अंतर समाप्त भी करना चाहिए तो वापस उसको मिथ्यात्व में लाना है। इसलिए भोग भूमि के एक ही भोग में नहीं, लगातार 2-4 भोग तक उसका समय तो नहीं चलेगा। कोई तिर्यंश समय दृष्टि तिर्यंश में उत्पन्न नहीं होगा, पहले तिर्यंश आयु का बंद किया हो तो क्या होगा?
तो भोग भूमि
तिर्यंश
नहीं है, पहले तिर्यंश आयु का मिथ्यात्व में
किसी तिर्यंश ने तिर्यंश आयु बांधी और बाद में सम्यक तो प्राप्त किया
मिथ्यात्व में जाएगा
तो क्या होगा? मिथ्यात्व में जाएगा वो नियम से,
बाद में मरेगा।
हाँ, बाद में मरेगा, मरकर फिर तिर्यंश में चला जाएगा। सासाधन में जा सकता, तो यहाँ पर हम अंतर की बात देख रहे हैं। उदीरक का अंतर 3 पल्ले में थोड़ा कम, यानी वहाँ जाने पर सम्यक तो प्राप्त किया तो एक वहाँ जितना जैसा योग्य काल अंतर मूर्त तो नहीं कह सकेंगे, भोग भूमि है, गर्भज है,
तो तब तो माफ हो
जाएगा। हाँ, जो यथा योग्य गर्भ का काल और बाद में जो काल होगा उसको हमें लेना पड़ेगा। वो तो गर्भ का काल 2 महीने कम से कम बताया था, परंतु बाद में वो तो जल्दी उनकी डेवलपमेंट होती है, फिर भी यथा योग्य कहेंगे हम। पृथक वर्ष आया, अभी क्या लिखा है?
पृथक
मास
देखा था,
पृथक मास है कि वर्ष तिर्यंचों में। देखें ये कुछ कम में आ गया, 2 महीना तो वहाँ गर्भ का कम से कम काल बताए वेदक के लिए। भोग भूमि के लिए समान ही होगा, वेदक हो या उपशमित हो, तो पृथक तो मास होना चाहिए, क्योंकि वेदक के लिए सम्मूर्छन वाला वो अंतर्मूर्त में होता है। यहाँ भोग भूमि की बात हम पूछ रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अब तिर्यंचों में ही सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। सम्यक्त्व का उदीर्णा का अंतर कम से कम कितना होगा? प्रेरणा देने कैसे अंतर की बात चले, काल नहीं, काल एक समय हमने घटित किया था। हाँ, तो अंतर्मूर्त तक तो रहेगा, तो जघन्य अंतर कितना होगा?
अंतर
एक अंतर ओग के समान एक लिख दिया ना, यानी समय दृष्टि था, समय प्रकृति के यानी वेदक समय दृष्टि था, उसकी उदीर्णा चल रही थी, एक अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात में गया कहो तीसरे में गया कहो एक ही बात है, यानी वो गुणस्थान छोड़कर नीचे के गुणस्थान में आ गया और वापस लौट के आया 4th गुणस्थान में,
उदीर्णा चालू,
उदीर्णा शुरू होगा। सम्यक मिथ्यात्व में भी ऐसा ही समझना, एक अंतर्मूर्त के लिए पहले में या 4th में जाके वापस तीसरे में आया। अब उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? प्रतिभा तो आपको बताना है, सम्यक प्रकृति के उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतर तिर्यंचों, क्या करना है हमें? पहले सम्यक तो प्राप्त करा, फिर कहाँ भेज देना है? तो सम्यक प्रकृति की उदीर्णा नहीं होनी चाहिए, यानी उदय भी नहीं होना चाहिए, तो कौन से गुण स्थान में बीतना उससे? सासादन में एक समय रहेगा, छह अवली रहेगा, हमें उत्कृष्ट काल चाहिए। और सासादन में जाने वाले के सम्यक प्रकृति की उदीर्णा हो रही थी क्या पहले? अश्विन
नहीं,
क्यों नहीं हो रही थी? वो प्रथम उपशम वाला था तो उसको भी नहीं भेज सकते। समय प्रकृति की उदीर्णा किसके होती है? समय दृष्टि की, वेदिक समय दृष्टि की। वो मिथ्या तो में जाएगा तो उदीर्णा होगी क्या? नहीं होगी। तो अभी उसको नहीं होने की अवस्था में अधिक से अधिक काल रखना है, बाद में फिर उसको समय को प्राप्त कराना है। कितना कितना? अर्ध पुद्गल परावर्तन, क्योंकि तिर्यंश में है तो घटित होगा, मनुष्य में घटित नहीं हो सकता, अन्य किसी मार्गणा में घटित नहीं होगा। ओग में तो बताया ही था, यहाँ तिर्यंश में घटित हो सकता अर्ध पुद्गल परावर्तन। सम्यक मिथ्यात्व के बारे में भी उत्कृष्ट अंतर उतना ही होगा।
बैठा था नहीं है ना, एक आदमी बैठा था।
अभी हम अप्रत्याख्यानावरण के उदीरक का देखें। अप्रत्याख्यानावरण का उदय किस कुण स्थान में है? वंदा बेन चौथे में,
एक से चार में।
एक से चार में पहले वाले को है कि नहीं है? तो उसके उदीरक कौन है जहाँ उसका उदय है, उदय है? तो अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। इसका अर्थ बताओ अश्विन।
पांचवे गुण स्थान में पूरा काल तक रहेगा, और अंत में मरण के समय।
हाँ, तो पूर्व कोटि की आयु वाला कोई तिर्यंच है, यथा योग्य काल में उसने कर्म भूमि का ही लेना पड़ेगा। यथा योग्य काल में उसने समय को
प्राप्त किया, पांचवे गुण स्थान में गया,
पांचवे गुण स्थान में गया,
और पीछे
पूर्व कोटि का भाव लेना है, क्योंकि वो तीन पल्ले वाला लेके कोई फायदा नहीं है। चौथा गुण स्थान भी होगा तो अप्रत्याख्यान का उदय है, तो उदीर्णा भी है। तो उसकी उदीर्णा न हो गई इसलिए क्या हो सकता है? तो उसको पांचवें गुण स्थान में रहना पड़ेगा। तो जब तक पांचवें में है तब तक अप्रत्याख्यानावरण की उदीर्णा नहीं है, फिर लौट के उदीर्णा करानी है। चौथे में लाओ ना तो उदीर्णा कहीं पे भी जाए पांचवे के नीचे।
ये तो अंतिम समय में ले सकते हैं ना, मरण के समय में।
एक समय में आके मरण है वहां पर, चौथे में आके हो सकता है। वो कुछ कम है, जो पहले वाला जितना काल पांचवे में जाने के लिए जितना यथा योग्य काल आवश्यक है वो छोड़ के कुछ कम पूर्व को। आप क्या कहते हैं कृत्य कृत्य?
नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था कि ये अंतिम समय ले सकते हैं ना चौथे में आने का।
चौथे
मरण मरण हुआ, चौथे में आ गया,
मरण हो गया और चौथे में आगे वो नहीं चलेगा, तब वो देव हो जाएगा।
मरण के समय
में रहते हुए अंतर चाहिए। आठ कषाय और छह नौ कषायों के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अब ये जो लेना है, या पहले भी जो हमने अंतर्मूर्त देखा था, वो आठ कषाय के एक साथ नहीं लेना। एक उसमें से एक एक कषाय का उदय है तो उसकी उदीर्णा है, तो अंतर्मूर्त में वापस वो लौट कर उसी कषाय की उदीर्णा में आ जाएगा। इसलिए उसको जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख था। ख्याल में ये बात। और प्रत्याख्यान आवरण या अनंत अनुबंधी में भी यही सब सभी 16 कषाय में लगा। कैसे? क्रोध का उदय चल रहा है, तब तक क्रोध की उदीर्णा हो रही है, क्रोध से मान का उदय शुरू हुआ तो मान की उदीर्णा होगी, तब तक क्रोध के उदीर्णा का अंतर शुरू होगा, तो वापस लौटकर क्रोध में जब आएगा तो अंतर्मूर्त में आएगा।
यहाँ पे काल हमने एक समय का देखा था,
एक समय का यहाँ तिरियंचो में नहीं देखा है,
नहीं काल में देखा था ना,
ओघ में देखा था।
हाँ,
और वहाँ हमने ये भी बात देखी कि यहाँ तो अंतर्मूर्त बता रहे हैं और पहले हमने एक समय भी देखा था।
हाँ, वो तो भरण की अपेक्षा हो सकता है ना, एक समय।
हाँ, मार्गणा में।
हाँ,
फिर भी यहाँ नहीं एक समय लिया। यहाँ तो अंतर्मूर्त ही लिया है उन्होंने। अभी हो सकता है कि कहीं उस अपेक्षा से कहा होगा और कहीं नहीं कहा होगा, उसकी विशेष खोलकर बातें आगे कहीं आती है तो हम देखेंगे, क्योंकि अभी तो पूरी पुस्तक,
क्योंकि 16 कषाय और 6 अवकषाय को भी रखा,
उसमें तो हमने एक समय घटित किया था,
यानी
पढ़ा था, घटित नहीं किया था, पढ़ा था, परंतु वो काल पढ़ा था ना, अंतर पढ़ा था,
नहीं काल, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि काल का
काल तो घटित होता है,
मरण के
अंतर के लिए वापस उसमें आना चाहिए,
तो अंतर्मुख लगेगा।
काल कैसे घटित होगा?
क्रोध का उदय होगा, एक समय में मरण,
यानी मान का कर रहा था, मान से क्रोध में आया, एक समय में मरा, तो एक समय का काल हुआ मार्गणा में। अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रोध से मान हुआ और मान से फिर क्रोध में आना है, तो उसके लिए अंतर्मुहूर्त लगेगा, तो अंतर अंतर्मुहूर्त होगा, काल एक समय घटित हो सकता है।
वही मैं पूछ रहा था कि काल में हम लोग ने एक समय,
काल में एक समय था, अंतर में तो अंतर्मूर्त ही है। अपने अंतर की बात चली ना, स्त्रीवेद और पुरुष तिर्यंचो में स्त्रीवेद और पुरुषवेद के उदीरक का जघन्य अंतर क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि वो क्षुल्लक भव कहो या शुद्र भव कहो, लब्धिया पर्याप्त हो, वो तो कितना है, किस कौन से वेद है वहां पर, नपुंसक वेद है। और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। एक इंद्रिय में चला गया, लगातार उसका नपुंसक वेद ही है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक, बाद में जाके जब वो पंचेंद्रिय में उत्पन्न होगा तब उसके स्त्री या नपुंसक वेद, सॉरी स्त्री वेद या पुरुष वेद की उदीरना चालू हो जाएगी। अब नपुंसक वेद के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, तिर्यंचो में देख रहे, और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। पूर्व कोटि पृथक्त्व जब हम कहते हैं तो स्त्री और पुरुष तिर्यंचो में, स्त्री पुरुष वेद में रहने के काल
16
हाँ, उसके 8 और 8, परंतु संगी और असंगी में भी ले सकते हो। हाँ, 32 पूर्व कोटि, और यहाँ तीन पल्ले नहीं ले सकेंगे क्योंकि हमको वापस उसमें नपुंसक वेद में लाना है तिर्यंश में रहते हुए, तो पंचेंद्रिय का सर्वोत्कृष्ट काल नहीं लेना यहाँ पर, क्योंकि पूर्व कोटि पृथक्त्व में होगे तो वापस मरकर तिर्यंश में आ सकता है, पल्ले वाली बात लेंगे तो वहाँ देव में चला जाएगा, मरकर देव होगा, वापस उसको नपुंसक वेदी तीर्यंच बना था। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीर्यंच के जानना चाहिए, पंचेंद्रिय तीर्यंच यानी सामान्य से पंचेंद्रिय तीर्यंच होते, उसमें तीनों वेद वाले होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं, किंतु इतनी विशेषता है पंचेंद्रिय तीर्यंचों में भी, ये जो अभी तक ऊपर से बात बताते आए हैं ये विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, जैसे ऊपर तिर्यंच सामान्य में कहा था सेकंड लाइन में वैसा ही, और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले, ये पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले कैसे घटित होगा? सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अंतर, तो किसकी बात करें, शायद करेगा तो सम्यक प्रकृति का फिर से दोबारा उदीर्णा होगी क्या? नहीं ना ही मिथ्या सम्यक मिथ्या प्रकृति होगी, उसकी सत्ता में ही नहीं है। हमें अंतर्घटित करने के लिए दो बार उसको सम्य दृष्टि बनाना है। ये सम्यक प्रकृति में विसंजना से कुछ लेना देना नहीं। हाँ बोलो लक्ष्मी जी। देखो पंचेंद्रिय तीर्यंशों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? पूर्व कोटि पृथक्त्व अधि तीन पल्य। तो शुरू के पहले भूमि में समय को प्राप्त किया, फिर मिथ्यात्व में गया और भोग भूमि के अंत में जाके फिर समय को प्राप्त किया।
95 प्लस तीन पल्य,
बीच में जो सर्वोत्कृष्ट काल है 95 तीन पल्य। सामान्य तीर्यंशों में पंचेंद्रिय तीर्यंश अतिरिक्त में अगर हम अलग अलग घटित करते हैं तो वो बात अलग होगी। हाँ तो पूर्व कोटि पृथक तो इतना ही कहना है अभी तो, क्योंकि हमें सम्यक प्रकृति की बात कर रहे हैं। सामान्य तीर्यंशों में अलग बात होगी, पूर्व कोटि की वैल्यू अलग अलग होगी, पर्याप्त तीर्यंशों में अलग होगी और
सामान्य में अलग होगी,
यानी योनिमति में अलग होगी। मंजूबन कुछ समझ में आता है? उदीर्णा का अंतर चल रहा है, यानी पहले उदीर्णा कर रहा था, उदीर्णा कर रहा था यानी उदय चल रहा है। सम्यक तो प्रकृति का उदय किसके है? सभी सम्यक दृष्टियों के होता है, औक्षमिक को भी है, शायिक को भी है, वेदक सम्यक दृष्टि। तो उसके वेदक सम्यक को प्राप्त करा के फिर मिथ्या समय ले जाएंगे, वो कंटिन्यूस उसको तीर्यंश पंचेंद्रिय में रखना है। तीर्यंश इन जनरल बात की थी तब हमने अर्ध पुद्गल परावर्तन की बात, कुछ कम अर्ध पुद्गल, क्योंकि वो तो एक कहीं पर भी बटक सकता है। यहाँ मात्र पंचेंद्रियों में लेना है। तो पंचेंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? तो पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ले। तो पहले भव में एक बार समय को प्राप्त कराना अर्लीएस्ट, और अंतिम भव में
तीन पल्ले वाले
लास्ट में अंत में प्राप्त कराना। फिर उसको सम्यक दृष्टि रखो ना, फिर मिथ्या तो नहीं क्यों लाना है? सम्यक्त्व की उदीर्णा का अंतर देख रहे, सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो उदीर्णा शुरू हो गई, अंतर समाप्त होगा। तो सम्यक्त्व में रखते हुए उसको फिर सम्यक दृष्टि बन के वो जाएगा देव में। यानी उसके सम्यक्त्व की उदीर्णा करानी है तो तीन पल्य का अंतर इतना छोड़ा है तो कौन सा सम्यक तो प्राप्त होगा उसको? औक्षमिक होगा, क्योंकि पल्ले के असंख्या से भाग काल हो जाता है तो सम्यक तो की तो जो प्रकृति की तो उद्वेलना पूरी होती है। फिर औक्षमिक प्राप्त करेगा, फिर वेदक होगा, तब जाके उसकी उदीर्णा होगी, तब मरकर देव होगा जाके बाद में। अब आगे स्त्रीवेद ये पढ़ा था, स्त्रीवेद और पुरुष वेद के उदीरक का जघन्य अंतर क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। सामान्य तीर्यंशों में कितना देखा था हमने? असंख्यात पुद्गल पर। स्त्रीवेद पुरुष वेद के लिए वहां तो कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं थी। अब यहाँ पंचेंद्रिय तीर्यंशों की बात है इसलिए उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण। ये तीन पल्ले क्यों नहीं लेना?
वहां पे तो दो वेद हैं,
वहां तो स्त्री या पुरुष हो ही जाएगा, दो ही वेद हैं। तो पहले जो पूर्व कोटि पृथक्त्व है एक भव में वो स्त्री या पुरुष वेदी था, उसके नेक्स्ट भव से उसका वेद चेंज हो गया और फिर अंत में जाके आप कहीं भी उत्पन्न करा ना, पूर्व कोटि में उत्पन्न कराओ या पल्ले में, उसका स्त्री या पुरुष वेद हो जाएगा वापस। इसी प्रकार पहले तो पंचेंद्रिय तीर्यंश की बात बताई, इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीर्यंश पर्याप्तकों में जानना चाहिए। पर्याप्तकों में ना यहाँ पर पुरुष वेद और नपुंसक वेद दो ही वेद लिए, किंतु इतनी विशेषता है इनमें स्त्री वेद की उदीर्णा नहीं है। तथा पुरुष वेद के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। ऐसा क्यों कहा मंजू बहन, आपको बताना है। किसकी बात चल रही है? पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में पुरुष वेद के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त बताया। पर्याप्तकों में कौन कौन से वेद होते हैं? पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो पुरुष वेद का एक अंतर्मूर्त अंतर कैसे घटित होगा? क्या 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 क्या, यहाँ वेदों की बात चल रही है, यहाँ सम्यक तो से कुछ लेना देना नहीं है। नपुंसक वेदी होकर वापस पुरुष वेदी होना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिभा तय आप बोलो, प्रतिभा तय बोले नहीं। मंदा बहन क्या लक्ष्मी बताना चाहती, बोलो। वही वो काल कैसे होगा, मैं वही पूछना चाहती हूँ। नपुंसक वेद का अंतर्मूर्त काल कैसे होगा? पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त रखना, मरने की अपेक्षा नहीं।
ये तो पर्याप्त लेना है, पर्याप्त नपुंसक वेद का मिनिमम काल।
एक भव पर्याप्त जीवों का एक भव अंतर्मूर्त का होता है। अरे कौन सा है, कोई भी हो ना, तिर्यंचों का है ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच का नपुंसक वेद के साथ
एक मिनिमम आयु वाला,
एक अंतर्मूर्त वाला हो। यहाँ क्षुद्र वो लब्ध पर्याप्त इसलिए नहीं लिया है, वो अपर्याप्त है। हमारी पर्याप्त की प्ररूप ना चल रही, ख्याल में आई बात? एक भव छोटे में छोटा पर्याप्त जीवों का कम से कम भव एक अंतर्मूर्त का होता है। ऐसा वेद का पलटना नहीं होता एक ही भव में रहते हुए। तो पहले पुरुष वेदी था, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त है, अपनी प्ररूपणा चल रही, ये मार्गणा अपनी। उसमें एक भव उसने नपुंसक वेद तिर्यंच पर्याप्त का किया, कितना कम से कम एक अंतर्मूर्त, और वापस पुरुष वेदी होकर जन्म लिया, तो एक अंतर्मूर्त के लिए अंतर पड़ गया। ऐसे नपुंसक वेद में भी घटित कर सकते हैं ना, पर्याप्तों के लिए। पुरुष वेद का एक अंतर्मूर्त वाला भव किया और वापस नपुंसक वेदी हो गया। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त रखना है, तो यहाँ लिखा ना पुरुष वेद के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, पर्याप्त उनके लिए बताया। योनिनी तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसक वेद और पुरुष वेद की उदीर्णा नहीं होती तथा स्त्री वेद की उदीर्णा का अंतरकाल नहीं है। यहाँ कहाँ उदय ही नहीं होता, तो स्त्री वेद के रहते हुए अंतर होगा क्या? यहाँ मार्गणा कौन सी है? आप कहेंगे वहाँ भी आपने वेद पलटाया था, वहाँ मार्गणा वही रहती है। नपुंसक वेदी होने पर भी वो पंचेंद्रिय पर्याप्त ही रहा, पुरुष वेदी होने पर भी पर्याप्त पंचेंद्रिय रहा, तो उसको वहाँ दो वेद बदलने के चांसेस थे, भव बदलने, भव बदला फिर भी मार्गणा वही रही, और वापस वो मार्गणा वही रहते हुए फिर पुरुष वेदी होगा। परंतु जहाँ स्त्री वेद है एक ही वेद है
प्रतिपक्ष ही नहीं,
तो इसका भाव बदलेगे तो भी उसको स्त्री वेदी ही रखना है, तो यहाँ तो उदीर्णा का अंतर नहीं होगा, वो समाप्त हो जाएगा, फिर अन्य उसके मार्गणा बदल जाएगी। स्त्री वेद की मार्गणा रखते हुए इसमें अंतर संभव नहीं है, ख्याल में यही बात। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व और नपुंसक वेद के उदीरक का अंतरकाल नहीं है। मंजू बहन आपको बताना है, ये क्यों नहीं है उसके उदीरक का अंतरकाल? हाँ सर, मिथ्या दृष्टि एक ही मिथ्या तो पुनस्थान है, और वेद में क्या लेना, नपुसक वेद ही है। उस मार्गणा में रहते हुए ना वेद बदलेगा और ना ही सम्यक तो प्राप्त होगा। 16 कषाय और 6-9 कषायों के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, जैसे सर्वत्र लिया यहाँ पर। अंतर की बात है ना, वापस उसमें आना चाहिए। काल में तो हमने एक समय गठित किया, पर यहाँ अंतर की बात चल रही है। मनुष्य त्रिक में पंचेन्द्र तिर्यंच त्रिक के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है, इनमें प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का भंग अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के समान है। अब ये उसको नहीं देखते हुए आपको बताना है, लक्ष्मीबेन आप बताएंगे। प्रत्याख्यानावरण का भंग तिर्यंच में जैसे अप्रत्याख्यान का भंग देखा था वैसा है, यानी उसके उदीरक का अंतर। हाँ बहुत अच्छा, प्रत्याख्यानावरण के उदीरक है, पांचवे तक तो सभी उदीरक है, नहीं चौथे में नहीं, चौथे वाला भी उदीरक है। पहले गुणस्थान से पांचवे गुणस्थान तक के प्रत्याख्यान के उदीरक है, अब उसको ऊपर भेजना सातवें, जब तक सातवें छठवें में रहेंगे और वापस लौटकर पांचवें में आएंगे, कहीं पर ही आने दो नीचे के गुणस्थानों में, तो फिर उदीरना शुरू हो जाएगा। यानी मिनिमम रहने का जो काल होगा ऊपर, छठा सातवां दोनों चलते रहे हजारों बार, फिर भी वो एक अंतर्मूर्त में वापस लौट सकते हैं। तो एक अंतर्मूर्त होगा उसका जघन्य अंतर, और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा,
कुछ कम तो तक, अरे कुछ कम कोटि
पूर्व, पूर्व कोटि में कुछ कम,
8 साल कम कर दो।
कुछ कम कैसे, क्योंकि भले सम्यक दृष्टि जन्मा है या मिथ्या दृष्टि जन्मा है, 8 वर्ष के बाद संयम प्राप्त करेगा, तब प्रत्याख्यान की उदीरणा रुक गई, अंतर पड़ गया। मुनिराज रहे तो प्रत्याख्यान की उदीरणा नहीं हो रही थी, वो मात्र संज्वलन का उदय है ना उसे, तो अंत में जाकर उसी भव के अंत में, क्योंकि भव पलटेंगे तो देव में जाएंगे, उसी भव के अंत में उनको पांचवें में लाना, चौथे में लाना, कहीं पर भी मिथ्यात्व तो में भी चले जाए, सासाधन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सासाधन में जा सकते कि नहीं छठे से, हाँ औषमिक हो तो जाएगा, ये तो पूर्व कोटि तक तो सम्यक दृष्टि रहे हैं, तो ये कौन से होने चाहिए, हाँ वेदक शायक भी हो तो कोई वादा नहीं, शायक हो तो भी यही बात लागू होगी ना, उसके भी प्रत्याख्यानावरण का उदय होगा चौथे में आएंगे तो। यानी एक अंतर्मूर्त से लेकर एक अंतर्मूर्त जगन्य और उत्कृष्ट
कुछ कम,
कुछ कम पूर्व कोटि, हाँ 8 वर्ष और अंतर का भी अंतर्मूर्त ले लेना, दोनों ओर छोड़ देना। तथा मनुष्यनियों में स्त्रीवेद के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। प्रतिभाताएं आपको बताना है, मनुष्यनी रहते, देखो तिर्यंचनी रहते हुए स्त्रीवेद का अंतर ही नहीं था, परंतु मनुष्यनी के स्त्रीवेद का अंतर हो सकता है, ये कुछ गड़बड़ी की बात है ना। प्रतिभाताएं बेटा, हाँ वेग पलटेगा कैसे, मनुष्य नहीं है ना, स्त्रीवेद ही मनुष्य है, वेद पलटने का चांस ही नहीं है। मनुष्य नहीं लगातार रहे तो भी आड़ बहुत तक मनुष्य नहीं रहे, हाँ बोलो, हाँ अब श्रेणी चढ़ के उतर तो श्रीवेद का उदय था तब तक उदीरणा थी, श्रेणी चढ़ के फिर उसकी उदय उदीरणा दोनों रुक गए, फिर वापस लौट के आए तो उदीरणा शुरू हो गई। मनुष्य नहीं तो मनुष्य नहीं रह गया। तो स्त्री वेद के उदीरक का जगन्य उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, अभी मनुष्य नहीं कहते, और स्त्री वेद, वेद मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे, स्त्री वेदी जीव तो उसके अंतर कितना होगा? बोलो
स्त्रीवेदियों
के उत्कृष्ट अंतर,
उत्कृष्ट अंतर
हाँ, मनुष्यों में स्त्रीवेदी लगाना, अभी उन्हें मनुष्य नहीं लगाई
हाँ।
अभी स्त्रीवेदी लगाऊं,
उत्कृष्ट अंतर देखना,
नहीं जघन्य अंतर बताओ, जघन्य को या उत्कृष्ट को?
स्त्रीवेदी का तो हो जाएगा ना, जघन्य तो ये अंतर्मुखी होगा ना,
आप क्या कहते?
नहीं नहीं नहीं, नहीं।
हमने पहले बताया था, वेद मार्गणा बता रही थी, जब तक स्त्री वेदी है तो नवगुण स्थान तक ही है, बाद में तो वो अपगत वेदी हो जाते हैं, अपगत वेद होने पर भी उसको मनुष्य नहीं कह सकते, उसको स्त्री वेदी नहीं कह सकते, इसीलिए मैंने आपको पूछा। थोड़ा कथन में अंतर हो जाता है ना, जीव तो वही का वही है, उसको मनुष्य नहीं कह सकते चौदहवें गुणस्थान तक, परंतु स्त्रीवेदी कहते हैं नौवे के पहले भाग तक, बाद में उसी जीव को अपगत वेदी कहेंगे। अभी थोड़े थोड़े ज्यादा डिटेल सूक्ष्मता की ओर पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ तक तो गतियों की अपेक्षा भेद कर रहे हैं, या अन्य मार्गणाओं की अभी चर्चा नहीं हो रही, सब जगह उन्होंने ऐसा ही आहार मार्गणा तक जान लो, हम भी उतना ही पढ़ के आगे बढ़ रहे। देवों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व तब हुआ, ये हिंदी वालों को व का ब और ब का व करने में क्या मजा आती है? देवों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व समय मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी चतुष्क के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, ये तो बात ख्याल में, क्योंकि मिथ्यात्व का अंतर कब घटित करना मंजू बेन? हाँ बहुत अच्छा, एक अंतर्मूर्त तक समय दृष्टि रखकर फिर मिथ्यात्व, कौन से गुणस्थान में रखना उसको समय दृष्टि का? चौथे पांचवे छठे सातवें औषमिक समय तो में हाँ, अंतर्मूर्त कौन से गुणस्थान हम पूछ रहे हैं? हम गुणस्थान पूछ रहे हैं, औषमिक एक शायिक नहीं पूछ रहे, किसकी बात चल रही है? देवों की। हम सामान्य बात करेंगे तो चौथा पांचवा छठा सातवां कुछ भी कहो, यहाँ तो देवों में बात हाँ। सम्यक्त्व का अंतर कैसे होगा प्रेरणा में? मिथ्यात्व में रखा सम्यक, मिथ्यात्व का अंतर कहाँ भेजना? तीसरे में है उसका अंतर पर चाहिए, चौथे में या पहले में, पांचवे में जाएगा तीसरे वाला नहीं जाएगा, देवगति अब मनुष्य होगा तो जा सकता है, चौथे में जाता है। अनंतानुबंधी के उदीरक का जघन्य अंतर चल रहा है, यानी वो क्रोध हो तो मान हो जाएगा, फिर वापस क्रोध में आना है, हमने समय में एक समय घटित किया था परंतु अंतर में अंतर्मोह लेना है। अब यहाँ देवों में उत्कृष्ट अंतर सब में लगाना, मिथ्यात्व में भी सम्यक्त्व में भी, ये सभी चारों में कितना होता है
अंतर?
कुछ कम 31 सागर, उत्कृष्ट अंतर।
अच्छा ये ऊपर की बात है,
कहाँ की बात है ये 31 सागर?
नवे
ग्रहवे, क्योंकि वहाँ तक ये मिथ्यात्व सम्यक्त्व सारे गुणस्थानों का पलटना वहाँ तक हो सकता है, ऊपर तो सारे सम्यक दृष्टि है। यानी ऊपर तो मिथ्यात्व की उदीरणा ही नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व की भी नहीं है, अनंतानुबंधी की भी नहीं है, सम्यक प्रकृति की है परंतु उसमें अंतर नहीं,
अंतर नहीं, पुरुष वेद में अंतर नहीं होगा।
अब 12 कषाय, यहाँ तो अभी सामान्य की बात है, 12 कषाय हास्य रति भय और जुगुप्सा के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। इसमें ऐसा ही लेना ना, वहाँ तो उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर ले लिया था, अनंतानुबंधी के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर बोलो कैसा?
सम्यक तो प्राप्त कर लिया, तदंतर उदी का उदीदान ब्रह्म
उदीरक नहीं हुआ। अब यहाँ बारह कषाय में कैसे लगाना, सम्यक तो प्राप्त किया तो भी उदीरक तो रहा,
क्रोध से मान का मान समान
नहीं नहीं, अन्य बारह कषाय की बात समान है। नहीं नहीं, यहाँ अनंतानुबंधी विसर्जना करने से क्या फायदा हुआ, अनुदीर्ण पहले भी थे, विसर्जना के पहले भी, वो संक्रमण में उसमें फर्क पड़ता है, इसमें नहीं है। समय दृष्टि रखना, बैठे उदय नहीं है तो उदीर्ण भी नहीं, ये तो आसान है, वो संक्रमण का हम बहुत डिफिकल्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ तो उसका उदय है सबका, इन सबका उदय समय दृष्टि के भी मिथ्या दृष्टि के, तो अन्य कषाय रूप हो गया और फिर वापस उसमें आ गया, तो अंतर्मूर्त का अंतर होगा, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त यानी वापस उस कषाय में तो आएगा ही, यानी ऐसा है नहीं कि देवों में क्रोध कषाय नहीं हो गया, मान से वापस क्रोध में आया ऐसा नहीं, यानी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में उसी कषाय में आएगा ही जी नियम से। अरति और शोक के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर छह महीना है, ये हमने सतार सहस्रार में देखा था, छह महीने तक लगातार हास्य रति का उदय चले, परंतु अरति शोक का उदय अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं चले।
यहाँ पे ये जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त पता है, उसमें भी फर्क चलेगा, ये बारह कषाय हाश्य रति में नहीं पड़ेगा पर वही तो गुप्ता में, अरे बारह कषाय में पड़ेगा क्योंकि चार कषाय है तो वो अंतर्भूत बड़ा हो जाएगा, एक से दूसरे से दूसरे से दूसरे,
कौन से चार कषाय,
बारह कषाय में, बारह कषाय में
अंतर
क्रोध से मान में जाएगा, मान से माया में जाएगा, माया से तो जघन्य, तो क्रोध से मान में
यथा योग्य अंतर्मूर्त, हरे का कषाय का नौ कषाय के साथ मत लगा,
नहीं नहीं कषाय
का कषाय अपना अपना,
क्रोध से मान में जाएगा और वापस क्रोध में आ जाएगा तो वो जघन्य हो जाएगा, और क्रोध से मान माया लोभ में जाके
उसका अंतर कम ज्यादा हो सकता है, परंतु वो अंतर्मूर्त ही रहेगा। ये क्या कहना चाहते हैं, क्रोध से मान में गया और वापस लौट कर क्रोध में आया, और क्रोध से मान में गया, माया में गया, लोभ में गया, और फिर वापस फिर भी अंतर्मूर्त तक तो आएगा, वो अंतर उसका छोटा बड़ा हो सकता है। एक अंतर्मूर्त ही है, यानी जघन्य अंतर्मुख और उत्कृष्ट अंतर्मुख यथा योग्य, यानी ऐसा नहीं होगा कि क्रोध होगा ही नहीं और अन्य अन्य होता रहेगा, ऐसा नहीं है। यानी हास्य रति का भी अंतर अंतर्मुख, ऐसा नहीं होगा कि एक समय के लिए अरति शोक हो गई और वापस हो गए, ऐसा नहीं है। तो स्त्री वेद ये हो गया, उत्कृष्ट अंतर छह महीना है, अरति शोक में उत्कृष्ट अंतर हो सकता है क्योंकि हास्य रति का उदय लगातार छह महीने तक देवों में चल सकता है, वहां भी हमने कल सतार सहस्रार की अपेक्षा देखी थी। स्त्री वेद और पुरुष वेद के उदीरक का अंतर काल नहीं है, ये लक्ष्मी ताई ऐसा क्यों कहा लक्ष्मी बहन, स्त्री वेद का भी अंतर नहीं और पुरुष वेद का भी, उसके उदीरक का अंतर नहीं है, उदय नहीं है, उदय तो है स्त्री वेद का भी है, हाँ दो वेद है, तो देव में रहते हुए जो वेद है वही वेद रहेगा, बाद में देव की गति पलटेगी ना, मनुष्य में रहते हुए या तिरियंचों में रहते हुए वही वेद नेक्स्ट भव में रह सकता है, तो दो चार पांच भव भी पृथक कोटि भी भव उसी वेद के साथ हो सकते हैं, यहाँ यानी पृथक कोटि भव में आठ आठ भव पृथक कोटि वाले भव, हाँ नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, देव में तो एक ही भव है और वो एक जो वेद है वही वेद रहेगा, इसी से तो सिद्ध होता है कि नहीं होता, होता है ना इसमें तो नहीं तो बता दे कि एक ही भव में वो वेद पलट जाएगा अंतर्मूर्त में वापस आएगा, क्रोध में जैसे बताते हैं कि क्रोध का अंतर बताए अंतर्मूर्त, वैसे वेद का अंतर्मूर्त बताते हैं, ये दो चार साल बताते हैं, इसका अर्थ क्या है? जन्म से जो वेद है वो मरण तक वही वेद रहेगा।
ये 12 कषाय और 6 नौ कषाय में व्याघात नहीं हो सकता है ना?
व्याघात होगा फिर भी वो अंतर्मुख का होगा ना। व्याघात से भी क्या करते हो, क्रोध, व्याघात से तो क्रोध में आता है वापस।
हाँ।
फिर भी
एक समय में नहीं होगा।
नहीं, एक समय में नहीं होगा, इसी से सिद्ध होता है। देखो ये हम जो सूत्र पढ़ते हैं या उसके जो स्पष्टीकरण है उसमें तो यदि व्याघात से भी होता तो तू बता देते कि एक समय में आ सकता है, ये तो यहाँ तो बात ही नहीं है। काल में घटित हो सकता है,
मरण के
अंतर में, हाँ मरण आदि की अपेक्षा हो सकती है। तो स्त्री वेद पुरुष वेद के उदीरक का अंतर काल नहीं है, जो जिस वेद का उदीरक है वही रहेगा थ्रू आउट। भवनवासियों से लेकर नौ ग्रहवेग तक के देवों में इसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि वहां हमने मिथ्या तो समय समय मिथ्या तो सबको घटित किया था, परंतु इतनी विशेषताएं कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए। वहां सबको मिलकर 21 सागर कह दिया था, अब ये भवनवासी से हर एक की बात करेंगे तो अपनी अपनी स्थिति बतानी वहां पर। तथा इनमें अरति और शोक के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। एक शतार सहस्रार को छोड़ो
सभी जगह अंतर,
तो सभी जगह जैसे हास्यरति का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त देखा जघन्य उत्कृष्ट, वैसे अरति शोक में भी समझना और शतार सहस्रार में अरति शोक के उदीरक का अंतर का सामान्य देव के समान है। यानी सामान्य देव में जो अंतर बताए वो शतार की अपेक्षा बताए, जैसे कर्म की स्थिति कितने तो 70 पड़ा परंतु, और मिथ्यात्व की कितने तो 70, बाकी की यथायोग्य अपनी अपनी। वैसे सामान्य देवों में जो 6 महीने का उदय कहते हैं हास्यरति का, वो शतार सहस्रार की अपेक्षा बताए, लगातार 6 महीने तक उसका उदय चलेगा। क्या विशेषता हो सकती है शतार सहस्रार में ही हो, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है,
सर्वत्र स्थिति में भी नहीं है,
कहीं पर भी नहीं ना, यहाँ लिखा ना मात्र शतार सहस्रार में। सनत कुमार से लेकर नव ग्रहवेग तक देवों में स्त्री वेद की उदीरणा नहीं है,
पुरुष वेद
तो क्या ऊपर होती है? तो सनत कुमार से लेकर नव ग्रहवेग तक के देवों में स्त्री वेद की उदीरणा नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रहवेग तक के देवों में ये बात लगा रहे हैं, इसलिए भवनवासी से लेकर नौ ग्रहवेग तक ऐसा ही है ये कह दिया। अब उनमें जो विशेषता है उसकी बात करें, अभी तक तो ग्रहवेग तक की लिमिट ली है, जब अनुदिश की बात आएगी तो वहां भी कहेंगे उनके उदीरक नहीं है, आने वाली। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व और पुरुष वेद के उदीरक का क्या है, नहीं है
अंतरकाल
नहीं है, सम्यक्त्व के उदीरक नहीं है, नहीं कहा अंतर नहीं है, कहा डिफरेंस ख्याल में आता है? वहां के जो वेदक सम्य दृष्टि है वो तो उदीरक ही है थ्रू आउट, शायक हो गए ये तो ठीक है उनके पास नहीं है। और द्वितीय उपशम है, द्वितीय उपशम में अपर्याप्त अवस्था में तब तक अनुदीरक कहेंगे हम, बाद में तो वेदक हो जाएंगे तो उदीरक है। बारह कषाय और 6-9 कषाय उनके उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यानी वहां भी सभी सम्य दृष्टि है और एक किसी क्रोध का या मान का या माया का, तीन 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 क्रोध तीन माया तीन लोग ऐसा उदय चलेगा ना कहीं किसी का भी, तो वापस लौटकर उसी कषाय में आने को अंतर्मूर्त तो लगेगा जघन्य और उत्कृष्ट। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, ये हमने अंतर अनुगम देखा ओघ में और आदेश में, अब आगे वाला देखेंगे। कितना 15 नंबर है ना, सन्निकर्ष, बहुत अच्छा। सन्निकर्षानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। सन्निकर्ष किसको कहते याद है?
साथ साथ में जो होता है
हाँ, एक के होते हुए
दूसरे
की क्या पोजीशन है, ये 15 नंबर का उत्तर प्रकृति उदीरणा में 15 नंबर का
बंद करती।
हाँ, संनिकार्षणागम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व की उदीरणा करने वाला जीव 16 कषाय और 9 9 कषाय उनका कदाचित उदीरक होता है, कदाचित अनुदीरक। अभी क्या कहना चाहते हैं, अभी एक की उदीरणा कर रहा है उस समय अन्य की क्या पोजीशन है। तो देखो, मिथ्यात्व की उदीरणा कर रहा है कौन से गुणस्थान वाला है,
पहले
वहां पर
16
कषाय और 9 9 कषायों का कदाचित उदीरक है और कदाचित अनुदीरक है, क्योंकि 16 कषायों का एक साथ तो उदय नहीं होता है। कषायों में से 4 4 का होगा, या तो क्रोध का होगा, या मान का, या माया का, या लोभ का। तो उसके उदीरक हम कहें ना, क्रोध का उदीरक है तो मान माया लोभ का नहीं है। इस तरह से कदाचित है भी, कदाचित नहीं भी। और नौकशा में भी ऐसे लेना है,
प्रतिपक्ष
उसमें भी किसी वेद का उदय उदीरक होगा तो अन्य वेद का नहीं होगा, और हास्य रति का होगा तो अन्य का। तो ये तो प्रतिपक्षी प्रकृतियां है। भय और जुगुप्सा में भी उदय में वो तो प्रतिपक्ष लगता है, कदाचित एक का है, कदाचित एक का भी नहीं है, कदाचित दोनों का है। तो इसमें ये सभी ऑप्शन संभव है। तो मिथ्यात्व के जो उदीरक है, वो मिथ्यात्व के उदीरक जीव 16 कषाय और 9 9 कषाय के कदाचित उदीरक, एक ही जीव की बात चली है, यानी एट अ टाइम वो है कि नहीं उसकी बात चल रही है। तो कदाचित है तो कदाचित अनुदीरक है, ये बात ख्याल में आई। अभी सम्यक्त्व की उदीरणा करने वाला जीव, सम्यक्त्व की उदीरणा कौन कर रहा है, सम्यक दृष्टि गुणस्थान 4 से 7, अभी उसकी बात पढ़ेंगे। तो जो सम्यक्त्व की उदीरणा करने वाले वेदक समय दृष्टि 4 से 7 गुणस्थान वाले, 12 कषाय और 9 9 कषायों का कदाचित उदीरक होता है, कदाचित अनुदीरक होता है। मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व की उदीरणा के साथ 16 कषाय को लिया, क्योंकि वहां अनंत अनुबंधी का उदय भी उदीरक भी है। यहाँ 12 लिया सम्यक्त्व की उदीरणा करने वाले जीव के, 12 कषाय और 9 9 कषायों का कदाचित उदीरक, कदाचित अनुदीरक होता है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से जान लेना चाहिए। तो जो सम्यक्त्व की उदीरणा कर रहा है, वो नपुंसक वेद की उदीरणा करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, नाट्य हो गए तो क्या, और नपुंसक वेदी तीरंज भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, करें। श्रेणी में तो समय तो क्या उदय ही नहीं। हाँ देखो, यहाँ अभी सन्निकर्ष की बात चलेगी, मिथ्यात्व की उदीरणा कर रहा है यानी उदय मिथ्यात्व का है, यानी पहला गुणस्थान। अब कहते 16 कषाय 9 9 कषायों का कदाचित उदीरक है, यहाँ तो 16 कषाय में से उदय एट अ टाइम किसका चलता है, 4 क्रोध का, 4 मान का, 4 माया का, यानी वो कदाचित उदीरक है। क्रोध का कदाचित है, मान माया नहीं भी है। 16 एट अ टाइम नहीं लेना है,
चार चार
क्रोध का, या मान का, या मान माया का, या लोक का, 4 4 की जोड़ी लेना मिथ्यात्व।
क्रोध का
अन्य का नहीं है, अन्य का अनुदीरक है, कदाचित है कदाचित नहीं है। ये वेदों में हास्य रति के युगल में भी ऐसे समझ, भय में भी, जुगुप्सा में भी कदाचित भय का उदय है, कदाचित उसका है, कदाचित दोनों का ही नहीं, इसलिए कदाचित शब्द डाल। अभी उसके बाद सम्यक्त्व की उदीरणा करने वाला है, ये तो समय दृष्टि जी, उसमें भी 12 कषायों के बारे में और 9 9 कषायों के बारे में ऐसा ही लगाना। यहाँ अनंत अनुबंधी को लिया ही नहीं, क्योंकि वो नियम से
अनुदीरक।
इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से जान लेना, અને જો જીવ સમ્યક મિથ્યાત્વ કે ઉદી રખે એને ગુણસ્થાને તીસરા તો વહાં બારા કશાયન કી બાત લગાય વહાં અનંત અનુબંધી કા ઉદય ઉદીરના નહીં. અબ યે તીન કી બાત હોગી. અબ અનંત અનુબંધી ક્રોધ કી ઉદીરના કરને વાલા જીવ તીન ક્રોધો કા નિયમ સે ઉદીરક હોતા હૈ. અનંત અનુબંધી કી ઉદીરના કોણ કરતા હૈ? દગુણસ્થાન વાલે. તો જહાં અનંતાનુબંધી કા ઉદય ચલ રહા હૈ,
તીનો ક્રોધ
યાની ચાર કા એટ અ ટાઈમ ચલ રહા હૈ, ચાર ક્રોધ યા ચાર માન યા ચાર માયા, તો ઉસ સમય જો અનંતાનુબંધી ક્રોધ કા કર રહા હૈ ઉસી સમય અપ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ, પ્રત્યાખ્યાન ક્રોધ ઓર સંનિવલન ક્રોધ કા ભી કર હી રહા હૈ. ચારો કા ઉદય એક સાથે
નિયમ સે,
નિયમ સે, ક્યોંકિ અનંતાનુબંધી કા કર રહા હૈ ઇસલિયે ઉસકો નિયમ સે કા. અપ્રત્યાખ્યાન કા કરને વાલા હૈ વો અનંતાનુબંધી કા, જો અપ્રત્યાખ્યાન કા કરતા હૈ વો અનંતાનુબંધી કા કરેગા કે નહીં કરેગા? પહેલે ગુણસ્થાન મેં પહેલે તીનો મેં કરેગા, પહેલે દો મેં કરેગા, તીસરે ચોથે મેં નહીં કરેગા. તો ઇસીલે કહેતે અનંતાનુબંધી ક્રોધ કી ઉદીરના કરને વાલા જીવ તીન ક્રોધો કા નિયમ સે ઉદી રખે. જ્યાં અનંતાનુબંધી ક્રોધ કા ઉદય ચલ રહા હૈ વહાં તીનો કા હી ઉદય ઓર ઉદીરણા ચલી રહી હૈ. મિથ્યાત્વ અભી અનંતાનુબંધી ક્રોધ કે સાથ મિથ્યાત્વ કો લગાય. મિથ્યાત્વ ઓર નવ નવ કષાયો કા કદાચિત ઉદીરક હોતા હૈ. પ્રેરણા બિના આપકો બતાના હૈ. અનંતાનુબંધી કી ઉદીરણા કર રહા હૈ ઓર મિથ્યાત્વ કા કદાચિત ઉદીરક હૈ કદાચિત નહીં ભી હોતા હૈ એસા ક્યો કહા? જીતકે અનંતાનુબંધી કા ઉદય હૈ ઓર ઉસકે સાથ મિથ્યાત્વ કો લગાના. પહેલે ગુણસ્થાન કી બાત હૈ તો ક્યા હૈ? મિથ્યાત્વ કા ઉદીરક હૈ ઓર અનુદીરક કોણ હોગા? બહોત અચ્છા, સાસાધન વાલા. અનંતાનુબંધી કા ઉદય હૈ પરંતુ મિથ્યાત્વ હૈ નહીં હૈ તો ઉસકા અનુદીરક હોગા. બહોત અચ્છા. ઓર નવ નવ કષાયો કા કદાચિત, ક્યોંકિ નવ નવ કષાય એટ અ ટાઈમ તો નહીં હોતે, ઉસમે પ્રતિપક્ષ વાલે હોતે ઓર ભય જુગુપ્સા ઉદય કી અપેક્ષા ઉસકે ચાર ભંગ બનતે હૈ. ઇસી પ્રકાર તીન અનંતાનુબંધી કષાયો કી મુખ્યતા સે જાન લેના ચાહીએ. યહાં ક્રોધ પર ઘટિત કિયા, યહી કથન માન કે બારે મેં, માયા કે બારે મેં, લોભ કે બારે મેં. અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્રોધ કી ઉદીરણા કરને વાલે જીવ દો ક્રોધો કા નિયમ સે ઉદીરક હોતા હૈ. અબ યહાં નિયમ ડાલા, યાની ઉસકે પશ્ચાત વાલે જો હૈ ઉસકો નિયમ સે લે લેના. ક્યોંકિ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કી ઉદીરણા કરને વાલા જીવ કોણ કોણ હૈ? એક સે ચાર તક કે. તો જો ચોથે વાલા કર રહા હૈ વો તો નિયમ સે ઉપર કે દો કા કર રહા હૈ,
અનંતાનુબંધી કા નહીં.
તો અનંતાનુબંધી કા કરેગા હી એસા નહીં. ચોથે વાલા નહીં કર રહા હૈ,
પહેલે વાલા,
તીસરે વાલા નહીં કર રહા હૈ, પહેલે દૂસરે વાલે કર રહા હૈ. તો જહાં અપ્રત્યાખ્યાન કા ઉદય હૈ વહાં પ્રત્યાખ્યાન સંજવલન કા હૈ હી, તો દો કા નિયમ સે કર રહા હૈ. ઓર અનંતાનુબંધી કા કદાચિત ઉદીરક હૈ, કદાચિત અનુદીરક હૈ. દેખો અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ ક્રોધ કી ઉદીરણા કરને વાલા જીવ દો ક્રોધો કા, કોણ સે દો ક્રોધ મંજુબેન? હા, પ્રત્યાખ્યાન ઓર સંજવલન, ઉનકા નિયમ સે ઉદીરક હૈ. ઓર અનંતાનુબંધી ક્રોધ મિથ્યાત્વ સમ્યક્ત્વ સમ્યક મિથ્યાત્વ ઓર નવ નવ કષાયો કા કદાચિત ઉદીરક હોતા હૈ. અભી સબ મેં કદાચિત લગા લિયા, એક એક કો દેંગે હમ. અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કા ઉદીરક હૈ ઓર અનંતાનુબંધી ક્રોધ કા ઉદીરક નહીં હૈ. ઉદીરક હૈ તો હમ પહેલે કે ગુણસ્થાન કહે, ઓર ઉસકા ઉદય ઉદીરક નહીં હૈ તો તીસરા ચોથા,
તીસરા ચોથા,
તીસરા ચોથા. મિથ્યાત્વ કા ઉદીરક, અપ્રત્યાખ્યાન કે ઉદીરક વાલે કે સાથ વહી જીવ મિથ્યાત્વ કા ઉદીરક હૈ તો ગુણસ્થાન પહેલા, ઓર ઉદીરક નહીં હૈ ગુણસ્થાન
દૂસરા, તીસરા,
તીસરા ઓર ચોથા. समझे? अभी अप्रत्याख्यान का उदीरक है और सम्यक तो प्रकृति का भी उदीरक है, तो कौन सा? चौथा गुण। और सम्यक प्रकृति का उदीरक नहीं है,
एक से तीन हो
जाएगा। ख्याल में आती बात? अप्रत्याख्यान का उदीरक होते हुए उदीरक कौन कौन जीव है? चार गुणस्थान तक के उदीरक है, उसमें उसका तो उदीरक है परंतु सम्यक प्रकृति का उदीरक नहीं है, तो पहले तीन गुणस्थान, पहले तीनों ही गुणस्थान में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व का भी ऐसा ही समझ। अभी इसमें तो तीसरे गुणस्थान में उदय है, तो तीसरे
एक,
में
दो,
वो
चार वाला नहीं है,
चौथे वाला भी नहीं है उदीरक, और पहले दो भी उदीरक नहीं है। नौ नौ कषायों का जैसे हम लगाते हैं वैसे
तो प्रतिपक्ष,
प्रतिपक्ष वालों में ले लेना। ये बात ख्याल में आती है? देखो देखो, मिथ्यात्व तो में ऐसा लिया हमने, अप्रत्याख्यानावरण का उदीरक है यानी उसका उदय है। अप्रत्याख्यान का उदय कहाँ कहाँ तक चलता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके साथ मिथ्यात्व का उदय हो तो मिथ्यात्व का उदीरक होगा। तो मिथ्यात्व का उदय कहाँ है? मात्र पहले। तो पहले में तो मिथ्यात्व का भी उदीरक है, परंतु दूसरे, तीसरे, चौथे में अप्रत्याख्यान का उदीरक होते हुए भी मिथ्यात्व का अनुदीरक। अभी सम्यक में उल्टा सोचो, चौथे गुणस्थान में सम्यक प्रकृति का उदय है, उदीरक है, पहले तीन गुणस्थान में उसका उदीरक नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व में तीसरे में उसका उदीरक है, पहले, दूसरे और चौथे में नहीं है। नौ कषायों का तो जहां तहां जिसका उदय होगा, प्रतिपक्ष है, जिसका उदय होगा उसका उदीरक। वहां गुणस्थानों की बात लगाने की अभी तो जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर के गुणस्थान में अलग बात बताएं। इसी प्रकार जैसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध में घटित किया, ऐसा ही अप्रत्याख्यानावरण मान, माया और लोभ की मुख्यता से जान लेना चाहिए। तो अप्रत्याख्यानावरण मान के लिए नियम से किसका उदीरक होगा? नियम से उदीरक किसका होगा? संज्वलन और प्रत्याख्यान दोनों
मान का नियम से,
दो मान का नियम से उदीरक है, और बाकी में जो अभी हमने देखा वो ऑप्शन लगा दिया। अब प्रत्याख्यानावरण क्रोध की, तो प्रत्याख्यानावरण क्रोध की उदीरण करने वाला जीव लक्ष्मीबेन कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक का होगा ये जीव? पहले से पांचवे तक, अकेले पांचवा नहीं का, पहले से पांच, क्योंकि हमें, हम द्रव्यन युग में कैसे अनंत आनंद का उदय वहां का अप्रत्याख्यान कर, तो उसके साथ नेक्स्ट उसके पश्चात वाले है वहां पर। तो वह जीव क्रोध संज्वलन का नियम से उदीरक होता है, क्योंकि जहां प्रत्याख्यान क्रोध है वहां संज्वलन क्रोध भी है, उसका उदय चल रहा है। अब उसके नीचे वाले जो है अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यान, तो दो क्रोध, अभी यहां दो क्रोध को लिया ऑप्शनल में ले लेंगे, मिथ्यात्व, सम्यक्व, सम्यक मिथ्यात्व और नो नो कषाय। ऊपर हमने जैसे अप्रत्याख्यान के साथ मात्र अनंतानुबंधी को ऑप्शनल रखा था,
यहाँ पे दो को
प्रत्याख्यानावरण के साथ अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दोनों को ऑप्शनल में रखना, कदाचित उदीरक कहेंगे कदाचित अनुदीरक कहेंगे, ये सब बाकी तो सब ले लेना। दो क्रोध, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और नौ नौकषायों का कदाचित उदीरक होता है, कदाचित होता है, नहीं कदाचित नहीं होता। तो आपको सम्यक्त्व पर बताना है, लक्ष्मीबेन बताना है, कि प्रत्याख्यानावरण के उदीरणा करना करने वाला सम्यक्त्व की भी उदीरणा करने करता है, तो कौन से गुणस्थान में करता है? प्रत्याख्यान, हाँ पांचवा वाला, कि प्रत्याख्यान की भी उदीर्णा कर रहा है और सम्यक प्रकृति की भी उदीर्णा कर रहा है।
चौथा और पांचवा
उनको बोलने ना, उन्होंने तो अभी तो चौथे पांचवा कह लिया, उनको चौथे तक तो आने दो ना। चौथा भी लेना, चौथा भी लेना है। कितने कितने हो गए? नहीं कहूँ शाम को आपको नहीं समझा क्या शाम को क्या सुबह? शाम के ये अपना चल रहे हैं ना टेबल,
कल मेरा मिनिमम
समय ज्ञान चंद्रिका में, वहाँ तो पहले बीच में उत्तर देने वालों को फाइन रखा है अभी।
कल मेरा मिनिमम था,
कल आप नहीं आए थे ना।
नहीं कल मेरा मिनिमम था, मैंने बोला ही ना। तो नहीं आने
आपने बताया भी अरविंद तो बहुत खुश हो जाते
मेरे को मेरा ही कलेक्ट कर रहे हैं।
हाँ ऐसा पूछना नहीं तो जो नहीं समझ में आया चलो ऐसा ही चुप बैठा। देखो हम प्रत्याख्यान आवरण क्रोध की उदीर्णा वाली बात है ना, प्रत्याख्यान का उदय कहाँ कहाँ है, पहले से दूसरे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवे में उदय है तो उदीर्णा भी है। अब उसके उदीरक करना, उसकी उदीर्णा करने वाला जीव कहीं भी हो सकता है पहले से पांचवे तक। अब उसके साथ वो मिथ्यात्व की उदीर्णा करेगा कि नहीं करेगा? तो पहले वाला करेगा, बाकी नहीं करेगा तो कदाचित उदीरण। दूसरे तीसरे चौथे पांचवे वाले नहीं करेंगे। अब दो क्रोध की पहले बात की थी तो दो क्रोध का कौन से दो क्रोध की? नीचे वाले यानी उसके पहले वाले अनंतानुबंधी वाला, यानी जो प्रत्याख्यान की उदीर्णा कर रहा है वही जीव अनंतानुबंधी की भी उदीर्णा करता है, ऐसा कब होगा? पहले दूसरे में, और नहीं करता है तीसरा चौथा और पांचवा, बराबर। अभी अप्रत्याख्यान और पर लगा लेंगे कि अप्रत्याख्यान की उदीर्णा करने वाला अप्रत्याख्यान की भी उदीर्णा कर रहा है, ऐसे कहां तक होगा, कहां होगा? अकेले चौथे में, पहले दूसरे तीसरे चौथे में है ना, क्योंकि एक से चार तक अप्रत्याख्यान का उदय है। जैसे आपने अनंतानुबंधी में बराबर बताया पहले और दूसरे वाला करता है, तो यहाँ चौथे वाले तक करते हैं एक से चार। अब मिथ्यात्व की बात बता दी आपने, सम्यक तो प्रकृति की उदीर्णा कौन करेगा? प्रत्याख्यान की भी कर रहा है और सम्यक तो की भी कर रहा है, कहाँ होगा सम्यक प्रकृति की? नहीं नहीं सम्यक प्रकृति के चौथा पांचवा, और नहीं कर रहा है वो पहला दूसरा और तीसरा, ख्याल में? अब सम्यक मिथ्यात्व की बात है, प्रत्याख्यान की उदीर्णा कर रहा है और सम्यक मिथ्यात्व की भी कर रहा है, वो कौन सा गुणस्थान होगा? तीसरा। और नहीं करने वाले जीव एक दो चार, अभी आप ही बता रहे इतना आसान है ये सब, है ना? और नौ नौ कषायों का, अभी जिसका उदय है उसकी उदीर्णा करेगा वो तो प्रतिपक्ष, उदय में भी प्रतिपक्ष होता है ना, और बैजुगुप्सा को प्रतिपक्षी प्रकृति नहीं कहेंगे, यह हम उदय की अपेक्षा कर, उदय की अपेक्षा प्रतिपक्ष के, बंद की अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो निरंतर बंदी है। परंतु उदय में उसके चार भंग बनते, तो उदय की अपेक्षा यहाँ हम उसको प्रतिपक्ष में रखेंगे। यहाँ तक बात ख्याल में आई? तो कहते इसी प्रकार प्रत्याख्यान आवरण मान हमने क्रोध प्रकटित किया, मान में यही कथन होगा, तो दो मान का तो नियम से उदीरक होगा और बाकी में तो कदाचित और लगाएंगे। प्रत्याख्यान और मान माया और लोभ की मुख्यता से जान लेना चाहिए। क्रोध संज्वलन, अभी संज्वलन पर आ गए तो मेरा प्रश्न है मंजू बहन, क्रोध संज्वलन की उदीरणा करने वाला जीव कौन से गुणस्थान वाला है? पहले से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नौवे तक। जब तक क्रोध वेदक कान है ना, क्रोध वेदक कान यानी नवे गुण स्थान का दूसरा भाग। पहले भाग को हम वहाँ वेद का उदय, वेद और संज्वलन दोनों का उदय है कषाय का, और फिर एक एक कषाय का उदय है और वो मिटता चला जाता है। तो वहां तक क्रोध संज्वलन का उदय उदीरणा है। अब ऐसे जीव के साथ सन्निकर्ष लगा रहे, तो क्रोध संज्वलन की उदीरणा करने वाला जीव यानी पहले से नौवे गुण स्थान तक, अभी नवे गुण स्थान में यथायोग्य काल समझना, मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व तीन क्रोध और नौ नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है। अभी इसका अर्थ देखेंगे। क्रोध संज्वलन की उदीरणा हो रही है और मिथ्यात्व की भी हो रही है, ये कहाँ होगा? पहले गुण स्थान। क्रोध संज्वलन की भी हो रही है और सम्यक्त्व की भी हो रही है,
चार पाँच
छः सात, हाँ चार पाँच छः सात, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति, अन्य की बात नहीं चल रही, यानी हमने क्रोध के साथ अन्य की बात नहीं उठा रही, यहाँ तो सम्यक प्रकृति की बात करें। सम्यक मिथ्यात्व की करने वाला कौन है? तीसरा ही, एकमात्र तीसरा, जो जो हम कहाँ होती है उसको लिया ना, जो बाकी में नहीं होती ये भी लेना है। जब नहीं होती कहाँ हमने सम्यक्त्व की, सम्यक्त्व की कहाँ कहाँ नहीं होती उदीरणा, जो क्रोध संज्वलन की उदीरणा करने वाला जीव है वो सम्यक्त्व प्रकृति की उदीरणा नहीं करता, ऐसे कौन कौन से गुणस्थान में हो सकते हैं? पहला दूसरा तीसरा, हाँ बस आठवां और नौवां श्रेणी में भी सम्यक्त्व प्रकृति की उदीरणा नहीं, उदय नहीं है। ऐसे हर एक में ऐसे लगा लेना, मिथ्यात्व का मिथ्यात्व में है और दूसरे से आगे नवे तक नहीं है, क्योंकि उसका उदीरक जीव लिया है, तो उदीरक जहां तक है वहां तक हम कंपेयर करेंगे। तीन क्रोध, तीन क्रोध है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, जो संज्वलन क्रोध की उदीरणा कर रहा है वो अनंतानुबंधी की कहाँ तक करता है और कहाँ नहीं करता, बोलो अश्विन भाई।
पहले और दूसरे जो में करेगा,
करेगा पहले दूसरे में करेगा,
बाकी भी नहीं,
बाकी ने कहा
दूसरा तीसरे से नौवे तक नहीं करेगा।
तीसरे क्या
अनंतानुबंधी का सभी कर सुन संज्वलन क्रोध के साथ
उनका विसंयोजन करता है
तो नहीं है, कोई नहीं करता रहा ना, खाली उदीरणा कहाँ पे होगी? पहले
उदीरक नहीं है,
हाँ पहले और दूसरे गुरु स्थान में उदीरक है, इस साथ में हो रहा है उदीरणा हो रही है, तो और तीसरे से नवे तक उदीरक नहीं
है, नहीं है। हाँ। वैसे अप्रत्याख्यान का
पहले दूसरे तीसरे
चौथे तक उदीरक है, बाद में नहीं है। और प्रत्याख्यान का
एक से पांच में है,
एक से पांच तक उदीरक है उसके, हाँ उसके साथ साथ ऊपर नहीं। इसी प्रकार तीन संज्वलनों की मुख्यता से जाना, जैसे हमने क्रोध पर घटित किया वैसे ही मान माया लोक पर, स्त्री स्त्री बराबर करना, स्त्री हुआ है, स्त्री वेद की उदीरणा करने वाला जीव, अभी कषायों की बात हो गई, मिथ्यात्व की भी यानी दर्शन मुनि को भी लिया है और ये 16 कषायों पर भी घटित किया है। अब आगे स्त्री वेद की उदीरणा करने वाला जी मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों का कदाचित उदीरक होता है, अभी इसको देखेंगे। स्त्री वेद की उदीरणा करने वाले जीव के मिथ्यात्व की उदीरणा कहाँ होगी? पहले में, और कहाँ नहीं होगी? बहुत अच्छा, दूसरे से दूसरे गुणस्थान से नवे के पहले,
पहले बात
हाँ। क्योंकि स्त्री वेद की उदीरणा करने वाला लिया है ना, तो करने वाला कहाँ है? तो पहले पहले से लेकर नवे तक, नवे के पहले भाग तक। सम्यक्त्व प्रकृति की उदीरणा कौन करेगा? स्त्री वेद की भी उदीरणा चल रही है और सम्यक तो प्रकृति की, मंदा बिन आपको बताना है, त्रिवेद की उदीर्णा चल रही है और सम्यक प्रकृति की भी उदीर्णा हो रही है, गुणस्थान बताना है आपको, बस जो होना है वो सब बताना है आपको। हाँ देखो देखो क्या कहना है, त्रिवेद की उदीर्णा करने वाला जीव सम्यक प्रकृति की भी उदीर्णा कर रहा है। हाँ बोलो, चार से सात, चौथा पांचवा छठा सातवा, आगे तो द्वितीय
उपशम होता है,
प्रेरणा बिंदु, सम्यक प्रकृति किसका लिया था, सम्यक तो का नहीं लिया था।
हाँ। देखो पहले हम ये नक्की करते हैं कि उच्चम श्रेणी कौन करता है,
श्री वेद का तो है।
देखो द्वितीय ऑप्शन या क्षयिक करेगा, तो द्वितीय ऑप्शन में सम्यक प्रकृति का उदय होगा कि नहीं, तो बात खत्म।
आपने श्री वेद की उदीर्णा वहाँ तक होती है ऐसा हमने देखा, हमने उल्टा देखा था, क्रोध के साथ श्री वेद की या नपुसक वेद की कहाँ तक उदीर्णा होती है, वो मैंने समय दृष्टि की जीव के होती है कि नहीं पूछा था, तब जाके 90 तक होती है बात, यहाँ हम उल्टा देख रहे हैं, त्रिवेद की उदीर्णा कर रहा है जीव, तो उसके साथ सम्यक प्रकृति की उदीर्णा कहाँ तक होगी, जहाँ तक उसका उदय है, तो चार पाँच छः सात, वेदक समय दृष्टि कहाँ से कहाँ तक है, चार पाँच छः सात, तो वही आपको बताना है। और सम्यक मिथ्या तो त्रिवेद की भी उदीर्णा है और सम्यक मिथ्यात्व की भी उदीर्णा चल रही है। तीसरा गुण गतिया, गतिया बता रहे हैं कौन कौन से गति में होगा। मनुष्य तिरंत देव
नारकी
में तो त्रिवेद होता ही नहीं है। ये समय समय में दर्द 16 कषाय की बात है, अब 16 कषाय में ऐसा लेना है, अनंतानु त्रिवेद की भी उदीर्णा और अनंतानुबंधी की भी, गुणस्थान पहला दूसरा, तो प्रत्याख्यान की
एक से चार,
प्रत्याख्यान की
एक से पांच
और संज्वलन की
एक से,
जब तक उदीर्णा करने वाला है
तब तक होगी,
तो संज्वलन की उदीर्णा होगी किसी न किसी की, अभी सबकी नहीं होगी,
एक एक की होगी,
क्रोध की होगी या मान की, तो उसमें उसकी अपेक्षा हम कहेंगे, संज्वलन कहना है तो उदीर्णा होती है, परंतु उसमें एक एक अलग लेना है, तो कभी कोई क्रोध की होगी या मान की होगी या माया की होगी या लोक की होगी, जब तक त्रिवेद की उदीर्णा है तब तक कषाय का तो उदय उदीर्णा है ही, जब तक त्रिवेद का उदीरक है यही नहीं है, तो जब तक ये है तब तक तो कषाय है ही, सन्निकर्ष देख रहे हैं, तो 16 कषाय और 6-9 कषायों का कदाचित उदीरक होता है। यहाँ जो त्रिवेद का उदीरक है तो नियम से पुरुष वेद और नपुसक वेद का अनुदीरक ही है, ये तो बात नक्की होगी, यानी ये तीन वेद की बात होगी, अभी सन्निकर्ष किसके साथ लगाना है, छह के साथ, हाँ वो प्रतिपक्ष है ना, युगल है वो, हास्य रति युगल है और भय में भी चार भंग बनते हैं। हाँ, आपका कहना कदाचित उदीरक होता है और वो भी आठवें में, नौवे में तो उसके तो सत्ता ही नहीं है उसकी, त्रिवेद की उदीरणा चल रही है परंतु उसका उदय ही नहीं है, सत्ता नहीं है, उदय नहीं है, उसका उदय मिट गया है। इसी प्रकार पुरुष वेद और नपुसक वेद की मुख्यता से जानना चाहिए, जैसे अभी हमने त्रिवेद में लगा लिया ऐसे ही, क्योंकि उनका भी उदीरक कहाँ तक है, तो 9वें के पहले भाग तक। हास्य की उदीर्णा करने वाला जीव मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय तीन वेद भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक होता है, रति का नियम से उदीरक होता है, जिसके हास्य का उदय है उसका रति का नियम से उदय है, उदीरणादि नियम से, बाकी जो अभी हमने घटित किया है, कदाचित होता है मिथ्या तो गुणस्थान में मिथ्या तो का उदीरक है, ऊपर नहीं है, ऐसे ही सम्यक तो प्रकृति का चौथे से सातवें तक है, सम्यक मिथ्यात्व का तीसरे में है, सोलह कषा में भी
प्रतिपक्षता जब हो गई,
जहाँ जिसका अनंतानुबंधी का पहले दूसरे में है, उसमें भी क्रोध का है तो मान का नहीं है ऐसा, वहाँ पर और भी उसमें डिटेल में जा सकते हैं। तीन वेद में भी ऐसा है ना, तीनों वेदों में हास्य की उदीरणा करने वाले की तीनों वेद हो सकते हैं, तो कदाचित स्त्री वेद का उदीरक होगा तो पुरुष वेद का, पुस्तक वेद का नहीं होगा, एक किसी वेद का होगा, भय और जुगुप्सा में भी लगते हो तो रति का नियम से उदीरक है। इसी प्रकार रति की मुख्यता से जानना चाहिए हास्य के साथ, हाँ भय होगा भी नहीं भी होगा और दोनों भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है ना, उसका कदाचित उदीरक होता है, भय और जुगुप्सा का भी उदीरक हो सकता है। तथा इसी प्रकार अरति और शोक की मुख्यता से भी जानना चाहिए, भय की उदीरणा करने वाला जीव तीन दर्शन मोनीय आप सबको अलग अलग ने गिनाया, एक साथ बता दिया, सोलह कषाय, तीन वेद, हास्य रति शोक जुगुप्सा का कदाचित उदीरक है, यानी वो उसको अकेले को लिया, जुगुप्सा के साथ नहीं लिया, क्योंकि जुगुप्सा की मुख्यता से भी ऐसे है, जुगुप्सा भी कदाचित उसका उदीरक है, कदाचित नहीं है, जो भय की उदीरणा कर रहा है, कभी कभी क्या होता है दोनों का है उदय, तो उसका भी उदीरक होगा, कभी कभी अकेले भय का उदय है तो भय की उदीरणा चल रही है और जुगुप्सा का उदय ही नहीं है तो उसका अनुदीरक है। ये तो अभी हमने ओग में देख लिया। अब आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व की उदीरणा करने वाला जीव सोलह कषाय और छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है, यहाँ तो छह नौ कषायों कहने उसका सबका उदय तो है, परंतु क्रोध का हो गया, मान का या माया का लोप का, इसलिए कदाचित उदीरक अनुदीरक के लिया, नहीं कदाचित उदीरक है, कदाचित नहीं है, इस तरह नपुसक वेद का नियम से उदीरक है, नारकी है ना, सम्यक्त्व की उदीरणा करने वाला जीव, सम्यक्त्व की उदीरणा कौन कर रहा है, वेद समय दृष्टि वहां के बारह कषाय और छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है, यानी सम्यक्त्व की करने वाला किसका नहीं करेगा उदीरणा, मिथ्यात्व की भी नहीं करेगा, समय मिथ्यात्व की भी नहीं करेगा, अनंतानुबंधी की भी नहीं करेगा, परंतु जो बारह कषाय है और छह नौ कषाय है उसमें से तो ऑप्शनल होगी ना, इसलिए कदाचित का नपुसक वेद का नियम से उदीरक होता है, ये तो नाकी के हरेक के साथ नपुसक वेद का तो सन्निकर्ष चलेगा। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से जानना चाहिए, यानी जो सम्यक मिथ्यात्व की उदीरणा कर रहे हैं वो बारह कषाय और छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक है और नपुसक वेद का नियम से उदीरक है। अनंतानुबंधी क्रोध की उदीरणा करने वाला जीव तीन क्रोध और नपुसक वेद का नियम से उदीरक होता है, हमने कहा ना नपुसक वेद हर जगह लेना, ये तीन क्रोध कौन से हैं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन, मिथ्यात्व और छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है कि अनंतानुबंधी की उदीरणा करने वाला, मिथ्यात्व का कदाचित उदीरक कब होगा, पहले में है और कहां नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में अनंतानुबंधी का उदीरक ही नहीं है, ऐसा उसका उदीरक होते हुए बात चले ना, तो पहले दूसरे वाले उदीरक है, उसमें से पहले में मिथ्यात्व का उदीरक है, दूसरे में नहीं है, छह नौ कषायन का भी बता दिया। इसी प्रकार अनंतानुबंधी मान आदि तीन कषायों की मुख्यता से जानना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की उदीर्णा करने वाला जीव चार गुण स्थानों में करता है ना। मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्रोध, क्रोध के साथ क्रोध लिया और छह नौ कषायों का कदाचित उदीरक होता है। तो कदाचित उदीरक होता है जब कहा तो मिथ्यात्व का मिथ्यात्व में, सम्यक्त्व का कदाचित उदीरक है चौथे में, सम्यक मिथ्यात्व का तीसरे में, अनंतानुबंधी का पहले दूसरे में और छह नौ कषायों का जिसका जो उदय है कदाचित उदीरक। प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संयुगलन क्रोध, इन दो क्रोधों का नियम से उदीरक होता है अप्रत्याख्यानावरण। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषायों की मुख्यता से जानना चाहिए। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयुगलन के लिए वही कथन होगा क्योंकि चौथे गुणस्थान में सबकी उदीरणा चल रही है। हास्य की उदीरणा करने वाला जीव मिथ्यात्व कत्व हुआ हुआ तो और वो चाहिए। मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व सोलह कषायें, भय और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक होता है। नपुसक वेद और रति का नियम से उदीरक होता है। जो हास्य की उदीरणा करता है वो रति का तो करता ही है और नारकी, इसलिए नपुसक वेद हर जगह लगाना। इसी प्रकार रति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए तथा इसी प्रकार रति और शोक की मुख्यता से भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। भय की उदीरणा करने वाला जीव तीन दर्शन मुनिय सोलह कषाय हास्य रति अरति शोक और जुगुप्सा का कदाचित उदीरक होता है। नपुसक वेद का नियम से उदीरक होता है, बाकी सब में ऑप्शनल लगा। इसी प्रकार जुगुप्सा की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में सन्निकर्ष जानना चाहिए। यही उपयोगी जावानी के ज्ञान से सुझे लोकानो सोवानी मस्तक नमो सदा देतमो।
नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तचावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तचावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सप्तचावणम। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो।